देखिए, हम किसी भी अर्थव्यवस्था में जनरली उम्मीद करते हैं कि दाम बढ़ेंगे। हर आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि समय के साथ साथ दाम बढ़ेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि कीमतें बढ़ने की बजाय घटती हैं, तो उसे हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। तो जैसे इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, डिफ्लेशन के लिए शब्द है अपस्फीति। जो अभी हमने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में डिफ्लेशन फिगर्स आए हैं, पहली बार ऑस्ट्रेलियन प्राइस लेवल थोड़ा कम हो गया है, वो दरअसल में डिफ्लेशन कहना बहुत सही नहीं होगा, उसको डिस इन्फ्लेशन कहना ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कीमतें कम हो गई हैं, मतलब कीमतों की जो बढ़ने की दर थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। डिस इन्फ्लेशन आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, एटलीस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर दुनिया की इकोनॉमीज में देखने को आया है। कीमतें बढ़ी हैं हर साल 2 से 4%, 5%। आप किसी किसी देश को देखिए, हिंदुस्तान को देखिए, तो 9 से 10% हर साल बढ़ती रही है। यहाँ पर रिजर्व बैंक का ये स्टैंड रहा है कि हम 2 से 3% तक प्राइसेस को रखेंगे, लेकिन इस बार पहली बार एक ऐसा क्वार्टर आया है जब प्राइसेस 2% के नीचे चली गई हैं। मतलब कीमतें घटी नहीं है अभी, कीमतें थोड़ा कम बढ़ी हैं, जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं बढ़ी हैं, जिसे कहते हैं लोग डिसइन्फ्लेशन।
जी
तो अभी भी मतलब जैसे अगर आप साल भर का औसत लें तो कीमतें बढ़ी ही हैं साल भर के औसत पे। अगर एक क्वार्टर में कीमतें कम होती हैं और 3 क्वार्टर में बढ़ती हैं, तो साल भर के औसत में आपकी फिर भी बढ़ेंगी ही कीमतें। तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो है एक क्वार्टर में कम हुई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर ये कई क्वार्टर्स तक चलता है या कई सालों तक ये कीमतें कम होती रहती हैं, तो ये हम देखेंगे कि इकोनॉमी धीरे धीरे सिकुड़ रही है। कीमतें अगर बढ़ नहीं रही तो इकोनॉमी सिकुड़ने लगती है, व्यापार कम होने लगते हैं, नौकरियां कम होने लगती हैं।
जी
अगर एक बार कभी कभार होता है तो इसको ज्यादातर लोग इसको सीजनल प्रभाव की तरह मानकर चलते हैं। जैसे अगर आप इन फिगर्स का ब्रेकडाउन देखिए, तो इसमें बताया है कि जो इसका जो मेन ड्राइवर है वो है कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कीमतें कम हुई हैं, और कपड़ों की कीमतें कम हुई हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्टर, मतलब जैसे आपका मोबाइल फोन का प्लान है और इंटरनेट के डेटा पैकेज है, इनकी दाम भी कम हुए हैं इस क्वार्टर में, जिसका मिला जुला प्रभाव ये पड़ा है कि एवरेज जो औसत कीमतें हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं।
जी
बाकी जो और सेक्टर है, जैसे आप देखिए हेल्थ केयर है, एजुकेशन का सेक्टर है, इंश्योरेंस और मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है, इन सब में कीमतें एक्चुअली बढ़ी ही हैं, लेकिन ये आपका जो है फूड, पेट्रोल और कपड़ों की कीमतें कम होने की वजह से ओवरऑल कीमतें कम हुई हैं। अब आप जैसे देख रही हैं कि पेट्रोल के दाम बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कारणों से कम होते हैं, उसका मतलब ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी से उतना लेना देना नहीं है। फलों की अच्छी पैदावार हुई है इस सीजन में, बढ़िया समर था और काफी अच्छी पैदावार हुई है फलों की, और कपड़ों की इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ा है, जिसकी वजह से कई सारे रिटेलर्स ने दाम कम किए हैं कम्पीट करने के लिए।
जी
कहा नहीं जा सकता कि ये मतलब आगे भी चलता रहेगा या ये कंटिन्यू होगा बहुत लंबे समय तक।
जी तो ये बताइए फिर, ये बात सुर्खियों में क्यों है, ये जो ये आंकड़े आए हैं?
एक तो सुर्खियों में सबसे बड़ी बात, सबसे जो मुख्य कारण ये है कि किसी ने फोरकास्ट नहीं किया था इसको, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कीमतें कम होंगी, तो ये एक थोड़ा सा शॉक वाली बात है। दूसरा ये है कि आप देखिए कहीं पर भी अगर कीमतें बड़े लंबे समय तक कम होती रहती हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाती है उस इकोनॉमी के लिए, खासकर उस इकोनॉमी के रिजर्व बैंक के लिए। तो जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो एक डर वाली आशंका आ जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है कि जहां पर कीमतें कम होती जाएंगी, कहीं हम लोग जापान की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? जैसे जापान में आपने देखा कि कई 10 साल तक कीमतें नहीं बढ़ी और उसकी वजह से पूरी जो है इकोनॉमी काफी स्लो हो गई थी। तो ये डर वाला फैक्टर है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, एटलीस्ट एक क्वार्टर के नतीजे पर आदमी नहीं कहेगा कि इसमें डरने की कोई बात है या ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के बारे में कुछ भविष्य के बारे में कुछ खतरा कहा जा सकता है। अगर ऐसा लॉन्ग टर्म में होता है तो ये कहना जरूरी होगा कि इससे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के बारे में कुछ गंभीर थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहली चीज ये हो सकती है कि हम शायद एक अब एक लो इन्फ्लेशन फेज में गुजर रहे हैं, तो शायद रिजर्व बैंक को अपने 2 से 3% वाले मुद्रास्फीति के टारगेट को कम करके शायद थोड़ा सा 2% के नीचे लाना होगा। ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी एक ऐसे फेज में गुजर रही है जहां पर पहले 2 या 3 बिजनेस होते थे, कंपटीशन कम था तो कीमतें ज्यादा थी। हो सकता है हम एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं जहां पर ज्यादा बिजनेसेस होंगे और कीमतें ऑन एन एवरेज कम ही बढ़ेंगी। तो अगर ये लॉन्ग टर्म में होता है तो शायद सरकार को, और सबसे भी ज्यादा जरूरी है रिजर्व बैंक को, इस दिशा में कुछ प्रयास करने होंगे और अपनी नीतियों में कुछ ऐसे परिवर्तन करने होंगे कि अपने इस चेंज को एकोमोडेट किया जा सके।
जी अच्छा, ये बताइए कि ये खबर आने के बाद ऐसी भी अटकलें लगाई गई कि जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो कीमत है वो गिरी बाजार में, तो ऐसा क्यों हुआ?
नहीं, इस खबर के आने के बाद से लोगों का एक जो कुछ कुछ लोग पहले से भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट कम होगा, और इस खबर के आने के बाद लोगों को लगभग और भी ज्यादा विश्वसनीयता से लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट कम होगा और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर कम हुआ है। जब भी जो है आपका इंटरेस्ट रेट जो है लोग रिजर्व बैंक ने मान लीजिए कम किया, तो क्या होता है कि यहाँ का जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो कम अट्रैक्टिव लगने लगता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को। तो अगर जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है जो कि आपका कम मुनाफा दे रहा है साल के अंत में, तो आप शायद वहां से अपना पैसा निकाल करके किसी ऐसे देश में डालना चाहेंगे जहां पर इंटरेस्ट रेट हाई है, जहां पर आपको ज्यादा मुनाफा मिल रहा है।
जी
तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल लोग हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं वो यहाँ से ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेच करके किसी और करेंसी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है मूव करना चाहेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे लुढ़क जाएगा।
ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंटरेस्ट रेट शायद आरबीए जो है वो कम कर सकती है, और फिलहाल ही वो अपने जो सबसे न्यूनतम स्तर पर रही है मेरे ख्याल शायद वहीं पर है 2% पर, जहां तक मेरे जहन में आता है। तो
जी
इससे ज्यादा क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक घटाएगी इंटरेस्ट रेट को, और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं अगर ऐसा किया गया तो?
किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा स्फीति है उसको रोकना रिजर्व बैंक का काम है, और ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व बैंक ने अपने इस उद्देश्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि हमारा काम है मुद्रा स्फीति 2 से 3% के बीच में रहे। अब तक जब से ये रिजर्व बैंक ने अपनी ये पॉलिसी अनाउंस की है, यहाँ पर हुआ यह है कि हमेशा इन्फ्लेशन ऊपर जाने की कोशिश किया है और रिजर्व बैंक ने उसे रोकने का प्रयास किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन्फ्लेशन ऊपर जाने की बजाय एक्चुअली नीचे जा रहा है 2% से। तो बाजार में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन को नीचे जाने से रोकने के लिए कोई प्रयास करेगा, और अगर प्रयास करना है तो उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। सबसे बड़ा विकल्प है इंटरेस्ट रेट को कम करना। तो लोगों का पहले से भी अंदाजा था कि इंटरेस्ट रेट शायद रिजर्व बैंक और कम करे। रिजर्व बैंक के साथ एक समस्या यह है कि इंटरेस्ट रेट अभी बहुत ही कम है और उनको बहुत ज्यादा कम करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो एक संभावना तो ये है कि हो सकता है कि रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट कम करे अगली मीटिंग में। दूसरी संभावना यह है कि हो सकता है रिजर्व बैंक भी थोड़ा सा एक कॉशस अप्रोच अपनाए और कहे कि ये 1 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, इस पे शायद पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक बार और 1 क्वार्टर तक वेट करेंगे और तब शायद इसके बारे में निर्णय लेंगे।
जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या इसका बजट से कोई लेना देना है?
देखिए पल्लवी, टेक्निकली बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार का काम मुद्रास्फीति को रोकना नहीं है, वो रिजर्व बैंक का काम है, और किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार कभी भी रिजर्व बैंक के काम में इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये बेसिकली मुद्रास्फीति को रोकना रिजर्व बैंक का काम है। अभी बजट आने वाला है अगले हफ्ते, और बजट को देख करके ये जरूर कहा जा सकता है, कम से कम अटकलें लगाई जा सकती हैं कि इस बजट का क्या प्रभाव होगा। शायद ये बजट कीमतों को बढ़ाए, जिस तरह से सरकार खर्चे करती है, अगर सरकार बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खर्चा करेगी तो शायद हो सकता है कि उसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़े कीमतों पर। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ खर्चा नहीं किया, गवर्नमेंट ने बहुत ही कॉशस टाइप का बजट प्रोड्यूस किया जिसमें बहुत हाथ रोक कर खर्चा किया गया है, तो शायद उसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी नहीं, लेकिन घुमा फिरा के ये फिर भी रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी रहेगी।